करता है, ऐसा मनुष्य अपने आप का आत्म शत्रु है। प्रकार से उन्नति करनी चाहिए, उस उन्नति के 10 भेद है, अर्थात मनुष्य को 10 प्रकार से अपनी उन्नति करनी चाहिए और खूब इसको ध्यान देकर सुनना और समझना और समझ कर फिर इसको काम में लाना। तो कैसा भी मनुष्य क्यों नहीं हो, उसका भी उद्धार हो सकता है और उसके द्वारा लोगों का उद्धार हो सकता है। 10 बात यह है, शारीरिक उन्नति माने शरीर विषय की उन्नति 1, और इंद्रिय उन्नति अपने इंद्रियों की उन्नति करना ये दूसरी बात, और मानसिक उन्नति मन विषय की उन्नति करना ये तीसरी बात, और बौद्धिक उन्नति माने बुद्धि विषय की उन्नति करना ये चौथी बात, भौतिक उन्नति करना माने ये जो लौकिक उन्नति ये पांचवी बात, और सामाजिक उन्नति करना समाज विषय की जो समाज का पतन हो रहा है ये छठी बात, और व्यवहारिक उन्नति करना व्यापार की उन्नति करना और अपने आचरणों की उन्नति करना ये सातवीं बात, और जो नैतिक पतन हो रहा है नीति विषय की जो उन्नति करना ये आठवीं बात, और धार्मिक विषय की उन्नति करना ये नौवीं बात, और अपने कल्याण के लिए परमार्थ विषय की जो उन्नति है भक्ति ज्ञान वैराग ये दसवीं बात। ये 10 प्रकार की अपनी उन्नति के लिए प्रयत्न करना ये मनुष्यता है। इसलिए प्रथम आपको शारीरिक उन्नति के विषय में कहा जाता है, हमारे शरीर का संगठन अच्छा हो, शरीर आरोग्य रहे, शरीर एक प्रकार से हृष्ट पुष्ट रहे, उसमें फुर्ती रहे, यह स्थूल शरीर विषय की उन्नति है, और शरीर के जो आचरण है उस विषय की जो उन्नति है, और ऐसी उन्नति निष्काम भाव से की जाए तो मुक्ति कर देने वाली हो जाती है। शरीर के लिए सात्विक भोजन करना, इससे बुद्धि भी शुद्ध होती है और शरीर भी आरोग्य रहता है। इसके लिए भगवान ने गीता की 14वें अध्याय के 8 के श्लोक में बतला है, भोजन जो है पवित्र सात्विक शुद्ध भोजन करना जिससे बुद्धि आदि तेज हो है, और शरीर जो सो आरोग्य है, वह श्लोक इस प्रकार से है, आयु सकल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या चिंता तिरा विद्या आहरा सात्विक प्रिया। सात्विक जो मनुष्य होते हैं उनको ऐसा आहार यानी भोजन प्यारा होता है। कैसा भोजन? जो 6 बात को बढ़ाने वाला। कौन सी 6 बात? कि आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना, आयु को बढ़ाने वाला यानी उम्र को बढ़ाने वाला, सत्य माने अंतःकरण को पुष्ट करने वाला, और शरीर के मां बल बढ़ाने वाला, और आयु आरोग्यता को बढ़ाने वाला माने निरोगता को बनाने वाला, और सुख बनाने वाला और प्रीति बनाने वाला। ये छह बात का बनाने वाला जो भोजन है ये सात्विक पुरुषों को प्रिय होते हैं, ये सात्विक भोजन है। और वो कैसा होता है कि चार प्रकार का होता है, रस्या संसार सदा हिज्जा आरा सात्विक अप्रिया। वो ऐसा भोजन हो कि रस युक्त हो, जैसे फल है, जितने प्रकार के जो फल है, मौसमी है, अनार है, अंगूर है, नारंगी है इत्यादि जितने जो फल हैं, लहसुन और प्याज जो है, ये फल होने पर भी तामसी होने से इनका कभी सेवन नहीं करना, इससे बुद्धि तामसी हो जाती। फल है किंतु त्याज है, और जैसे शाक है उसमें भी अधिक रस रहता है, हरा शाक वो भी सात्विक है, और दूध गऊ का जो दूध है वो तो सात्विक है ही। इसके लिए और भी जैसे भैंस का दूध है, बकरी का दूध है, वो भी काम में लाया जाता है, सात्विक होते हुए भी एक प्रकार से उसके साथ में कुछ राशिपन है। और गऊ का दूध बिल्कुल सात्विक है, तो वो तो रस ही रस है। प्रशास निद्रा सुंदावन चिकना, जैसे गऊ का जो घी है वो एकदम सात्विक है, और दूसरे बकरी और भैंस का घी भी एक प्रकार से सात्विक है, होम के काम में नहीं लाया जा सकता, खाने के लिए कोई हर्ज की बात नहीं है, अच्छा है, सात्विक ही माना गया है, चिकना तो है ही। और इसी प्रकार से थी जो तेल जो है वो भी एक प्रकार से सात्विक माना गया है, चिकना होने के कारण से, जैसे तिल्ली का तेल है, पोस्टू का तेल है, मूंगफली का तेल है, और जो एक प्रकार से मेवा जो है के मां जो तेल रहता है वो तेल और मेवा भी चिकना रहता है, जैसे बादाम है, काजू कलिया है, नोजा है, पिस्ता है इत्यादि, ये भी है तो सात्विक है। ऋषि लोग जो है वे फल और साग, दूध और मेवा और अन्न यही खाया करते थे, और सात्विक भोजन एक तो आपको बताया रसयुक्त, दूसरा बताया चिकना, तीसरा जो है बहुत समय तक ठहरे, स्थिरा जिसको स्थिर माने स्थिर रहे बहुत काल तक, जिसको असर रहे, जैसे अनाज है, मेवा है, इसके प्राणु बहुत काल तक रहते हैं। और हिज्जा माने हृदय को जो प्यारा लगे, रुचिकर हुए, इस प्रकार का चार प्रकार का जो भोजन है वो तो सात्विक पुरुषों को प्रिय होता है, क्योंकि ये सात्विक भोजन है। और ऐसा भोजन होकर के फिर शुद्धता से बनाया जाए, पवित्रता से, तो वो पवित्र भोजन है। उस भोजन की शुद्धि से थी अंतःकरण की शुद्धि होती है, वेदों में ये बात बतलाई है, हर शुद्ध सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध गृह स्मृति। यानी भोजन की शुद्धि से थी अंतःकरण की शुद्धि होती है, अंतःकरण की शुद्धि से थी समृति जो है अचर हो जाती है परमात्मा के बीच में, तो बहुत ही लाभदायक है। और शरीर से व्यायाम करना, योगिक व्यायाम, जैसे आसनोचित व्यायाम जो है, 84 आसन बतलाए जाते हैं, उनके मन खास खास आसनों की व्यायाम करना, और भी जो एक प्रकार से हिंदुस्तान की जो पद्धति के अनुसार व्यायाम, और बाहर की जो पाश्चिमिक सभ्यता के अनुसार व्यायाम, व्यायाम कर करके दुग्ध पान करना, इससे लाभ बहुत होता है। व्यायाम करने से शरीर में पसीना आता है, उससे बीमारी चली जाती है, शरीर हल्का हो जाता है। और व्यायाम करने से शरीर में फुर्ती आती है, और उस व्यायाम के बाद दुग्ध पान करने से एक प्रकार से बुद्धि भी तेज होती है, शुद्ध होती है, और शरीर के मन सात्विक बल की वृद्धि होती है। यदि कोई गरीब आदमी हो, दूध नहीं मिले, तो अपने खुराक के अनुसार रात्रि के समय में आधा पाव या एक पाव चना भिजा देवे, चनों को धोकर के और चनों को भिजा देवे, और प्रातः काल के बाद व्यायाम कर करके उस चनों को खा करके उसी जल को पी ले, तो वो भी एक गरीबों के लिए बलदायक होता है, दूध के समान जो चने जो। ये शरीर के सूर शरीर के उन्नति की बात कही, अब उस शरीर का जो क्या कर्तव्य है, किस प्रकार से आचरण करना चाहिए, वो कल्याण करने वाली जो अपने शरीर की जो चेष्टा है वो आपको बतलाई जाती है। गीता की सप्तमी अध्याय के 14 के श्लोक में बतला है कि देव दिल गुरु प्राग पूजन सोच मार्ग ब्रह्मचर्य महिंसा सारी रंग तपुचती। देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और ज्ञानी, इनका जो पूजन यानी आदर सत्कार करना, नमस्कार करना। दूसरी बात, बाहर और भीतर की पवित्रता, जिसमें यहाँ बाहर की पवित्रता है, सिर्फ शरीर संबंधी पवित्रता, स्वचाचार और सदाचार, सबके साथ में उत्तम व्यवहार करना सदाचार है, और शरीर, घर और सबको पवित्र रखना ये स्वचाचार है। आरजू माने सरलता, जैसा भीतर का भाव हो वैसा ही बाहर का व्यवहार। जैसे बतलाया जाता है कि इनका स्वभाव बहुत ही सरल है और ब्रह्मचर्य को पालन करना, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना और अहिंसा धर्म का पालन करना, किसी की आत्मा को कष्ट नहीं देना, ये शरीर संबंधी तप है, यानी शरीर का, शरीर विषय का तप है। फिर इसको ख्याल करना चाहिए, ये जिस गुरु प्राग पूजन या पहली बात है, तो ये समझना चाहिए कि जो शास्त्रों में जिन देवताओं का नाम आता है उन देवताओं का पूजन करना, जैसे सूर्य देवता, चंद्रमा देवता इत्यादि। इसी प्रकार से थी समझो कि जैसे 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, अश्विनी कुमार, इंद्र, प्रजापति, विश्व देवा देवता आदि जो शास्त्री जो बहुत से देवता है उनका पूजन करना, जो ब्राह्मण द्विज से ती ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो तीनों को द्विज कहते हैं, किंतु यहाँ ब्राह्मण समझना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण का पूजन तो सभी कर सकते हैं, और द्विज से हम यहाँ वैश्य ले ले रहे हैं, तो वैश्य का पूजन तो ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ ब्राह्मण लेना चाहिए। गुरु से जो माता पिता आचार्य आदि जो हमारे से पद में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, और जितने जो हमारे से आचरण में बड़े हैं, वर्ण आश्रम में जो बड़े हैं, अवस्था के मां बड़े हैं, किसी भी प्रकार से जो हमारे से बड़े हैं, पूज्य हैं, गुरुजन, राज्य माने ज्ञानवान महात्मा पुरुष, योगी, भगवान के भक्त ऐसे जो महापुरुष जो हैं उनको समझना चाहिए। देवता जो है, ब्राह्मण जो है, और जो किसी भी प्रकार से हमारे बड़े गुरुजन हैं और ज्ञानी महात्मा है, इन सब का जो आदर सत्कार करना, सेवा करना, नमस्कार करना, ये उनका पूजन है। पवित्रता के विषय के बीच में महाभारत के अनुशासन पर्व में 149 के अध्याय के बीच के मां भीष्म जी राजा युधिष्ठिर के प्रति कहते हैं कि सर्वागमाना आचार्य प्रथमं परिकल्पते आचार्य प्रभवो धर्मो धर्मश्च प्रभुरच्युत। सब जो आगम जो है, शास्त्र वेद पुराण आदि, उनमें सबसे पहले आचार की कल्पना की गई। आचार माने सोचाचार, सदाचार, क्योंकि धर्म की उत्पत्ति आचार से होती है और धर्म के प्रभु साक्षात परमात्मा है अच्युत। इसलिए मनुष्यों को आचार के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। आचार माने आचरण, सदाचार, सोचाचार। और सरलता भी एक बहुत उत्तम गुण है, माने बाहर में एक, भीतर में एक, ऐसा नहीं, जैसा भीतर का भाव है वैसी ही वाणी, वैसा ही आचरण, यानी वक्रता का अभाव, उसको आर्जो कहती है, और ब्रह्मचर्य का पालन, हरेक प्रकार से वीर्य की रक्षा का करना ब्रह्मचर्य का पालन है। शरीर में जो वीर्य है, ये शरीर का तेज है। वीर्य से ही शरीर के वहां बल बुद्धि बढ़ती है, और तेज ओज से वीर्य से होता है। वीर्य के नाश होने से बल बुद्धि तेज और ओज इन सब का विनाश हो जाता है। इसलिए विशेष करके बालकों को और वास्तव में सबको ही वीर्य की रक्षा करनी चाहिए। वीर्य की रक्षा का नाम ही ब्रह्मचर्य का पालन है। और अहिंसा ये पांचवी बात है, किसी की आत्मा को कभी किंचित मात्र भी कष्ट नहीं देना, किसी निमित्त से भी कभी किसी को कष्ट नहीं देना, किसी क्षुद्र से भी क्षुद्र अपने प्राणी को कष्ट नहीं देना, अहिंसा धर्म का पालन है। इसका विस्तार तो बहुत है। इसलिए विस्तार नहीं कर करके आपको संक्षेप से ही बतला दिया गया है कि किसी जाति की हिंसा नहीं करना और किसी काल के मां नहीं करना और किसी निमित्त से नहीं करना और किसी देश में नहीं करना किसी की किंचित मात्र भी हिंसा नहीं करना अहिंसा है। तो ये आपको संक्षेप से शरीर विषय की उन्नति बतलाई। ऐसे ही इंद्रिय उन्नति माना इंद्रियों की उन्नति है। उसके विषय में जैसे ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, पांच ज्ञान इंद्रिय, पांच कर्म इंद्रिय, कर्म इंद्रियों के भी में वाणी प्रधान है। इसलिए भगवान ने वाणी के तप के विषय में बतलाया है। गीता अध्याय 17 श्लोक 15 में अनुद्वेकरण वाक्यं सत्यं परिहितं चेत् स्वाध्यायाभ्यसनते वाणी तदुच्यते। इसके भी 5 भेद बतलाए। जैसे शरीर के तप के विषय में 5 बात कही, इसी प्रकार से वाणी के तप के विषय में भी 5 बात कही। पहली बात तो ये कि ऐसा वचन नहीं बोलना जिससे किसी को उपद्रव हो, और सत वचन बोलना, प्रिय वचन बोलना, हित का वचन बोलना। और 5वीं बात है कि स्वाध्याय का अभ्यास करना। श्रुति स्मृति इतिहास पुराण जो है, इनके अर्थ और भाव को समझ करके इसका जो अध्ययन करना है, ये स्वाध्याय है। और स्वाध्याय का अभ्यास ही स्वाध्याय का अभ्यास है। अब ये ख्याल करना चाहिए, इससे वाणी शुद्ध होती है और पापों का नाश होता है, और उसकी वाणी सत्य हो जाती है। वो जो कुछ कह देता है वो सत्य होता है। वो किसी को जो आशीर्वाद दे देता है, वरदान दे देता है, श्राप दे देता है, तो उसकी वाणी ठीक वैसी हो जाती है जो कह देता है। महर्षि पतंजलि ने पातांजलि योग दर्शन में बतलाया है कि सत प्रतिष्ठायाम क्रिया फलार्थ, तुम सत की प्रतिष्ठा होने पर उसकी वाणी, माने उसकी वाणी की क्रिया फल वाली हो जाती, यानी वो जो कुछ कह देता है वही बात सत्य हो जाती है। सत के विषय के बाद मनुष्य वृत्ति की सत्य अध्याय में भी बतलाया है, सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात न ब्रियात सत्यम प्रियम अमृतम न प्रियम ब्रियात देश धर्म सनातन। सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रियात सत्यम अप्रियम, सत्य तो है किंतु अप्रिय है, ऐसा वचन नहीं बोलना चाहिए। सत्य हो और प्रिय हो ऐसा ही बोलना चाहिए। और झूठ मिथ्या वचन है किंतु प्रिय है ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। ये सनातन धर्म है। तो मनु जी ने जो 2 बात कही, सत्य बोलना, प्रिय बोलना, और गीता के मां, इसके 3 विशेषण दिए, सत्यम प्रिय हितम चैत। तो ये समझना चाहिए कि उसको प्रिय कोई खुलासा किया है कि वास्तव में जो हित है वही वास्तव में प्रिय है। तो प्रिय के अंतर्गत ही हित है। जिसमें हित नहीं है वो क्या प्रिय है? तो इस प्रकार से थी वचन बोलना चाहिए। और जिससे किसी को उद्वेग हो है, ऐसा वचन तो बोलना ही नहीं चाहिए। ये तो प्रथम ही आपको बतला दिया। और वाणी के द्वारा जो श्रुति स्मृति इतिहास पुराणों का जो अध्ययन करना है वो स्वाध्याय है। उसके अर्थ और भाव को यदि अध्ययन किया जावे तो वो उच्च कोटि का स्वाध्याय है। इसी प्रकार से थी ज्ञानेन्द्रियों के बीच के वहां नेत्र और करण इंद्री, ये प्रधान है। कानों के द्वारा अच्छी बातें सुनना जो हमारी हितकर हुए, हमारे कान जो है निंदा की बात सुनने से थी मलिन हो गए हैं, गंदे हो गए हैं, उसको शुद्ध बनाना। भक्ति ज्ञान वैराग की सदाचार की बातें सुनने से, और कानों से लोकहित की बात सुननी जिससे हमारे कान पवित्र हो, और इससे विपरीत बातें नहीं सुननी, तो इससे कान पवित्र होते हैं। इसी प्रकार से थी हमारे नेत्रों को पवित्र बनाना, नेत्रों से सूर्य चंद्रमा आदि देवताओं का दर्शन करना, नेत्रों से महात्माओं का दर्शन करना, मंदिरों के बीच में जाकर के देवता और भगवान की मूर्ति का दर्शन करना, इस प्रकार के करने से नेत्र पवित्र और शुद्ध होते हैं, इसकी उन्नति होती है। और इसके विपरीत जो है उससे नेत्र मलिन हो जाते हैं। परस्त्री को अश्लील भाव से देखने से नेत्र गंदे हो जाते हैं। इसी प्रकार से नेत्रों के द्वारा जो पाप किया जाता है उसे नेत्र एकदम गंदे हो जाते हैं। ऐसे ही और भी जैसे हमारे हाथ हैं, ये कर्मेंद्रिय के माम ऐसे मुख हैं, तो हाथों के द्वारा दूसरों का हित करना, दान देना, हाथों के द्वारा यज्ञ करना, पूजा करना, इससे हाथ पवित्र हो जाते हैं। इस प्रकार से थी धार्मिक काम करने से ये इंद्रियां पवित्र होती है और पाप का काम करने से इंद्रियां दूषित हो जाती है। तो इंद्रियों को पवित्र बनाना और इंद्रियों को जिद्द बनाना, उत्तम आचरण से इंद्रियां अलौकिक और जिद्द हो जाती है और जिद्द होने से उसमें सिद्धियां की प्राप्ति होती है। अनिमा महिमा गरिमा लघिमा। और मन के पवित्र होने से उसमें सिद्धियां उसके अनुसार होती है, प्राप्ति प्रकाम इसित्व वशित्व। किंतु इन सिद्धियों का आदर नहीं करना, इसका एक प्रकार से आदर करने से मनुष्य फंस जाता है। इनको पवित्र बनाना अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, न कि सांसारिक भोगों के लिए और सिद्धियों के लिए। इसी उन्नति है मानसिक उन्नति, मन विषय की उन्नति, जिसका वर्णन भगवान ने गीता की 17वें अध्याय के 16वें श्लोक में बतलाया है। मन प्रसाद सोम तुम मौन मातु निग्रह भाव संशुद्धित तत्पो मान समुच्यते। इसमें भी 5 बात बतलाई है।